आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 81 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाऊणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय रदिवीरम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी के जो प्रवचन हुए हैं, इन्हीं को सहजानंद जी नाम से जाना जाता है। इस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक द्वितीय पुस्तक उसके पृष्ठ संख्या 89 पर हम आ गए। निवासी गुजराती में 89। हाँ, यहाँ नया पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। यहाँ पर करुणा भाव में आत्मस्पर्शन का स्थान, यह हमने गाथा में वो देखा था ना, दया दम यानी इंद्रिय दमन त्याग समाधि, इसमें तू अपनी प्रवृत्ति कर, ये बात यहां बताई थी, क्योंकि यही एक मार्ग है, इसमें तू निष्कपट होकर गमन कर, यानी सीधा सरल मन से इसमें गमन कर, ये कह रहे थे। तो दया की बात हुई थी तो कि अपनी और परजीवों की दया, उसको दया कहा था। तो कहते यही जो करुणा भाव है, दया की जो बात है, उसमें आत्मस्पर्शन का स्थान, यानी अपना अपने को जानकर परिचय करके आत्मानुभव करके वहां से शुरू हो जाता है। यानी अपना अस्तित्व ही जिसने नहीं माना नहीं जाना, अपनी दया की नहीं, और मैं पर की दया पालता हूँ, यानी शरीर मैं हूँ और बाकी पर की मैं दया पालता हूँ, ये सब उसने मान लिया था। करुणा भाव में कुछ न कुछ आत्मस्वरूप का स्पर्श होता है। दूसरे जीवों पर दया तभी उत्पन्न होती है जब इस तरह की कोई बात खुद में भी अनुभूत हो जाती है, क्योंकि वो तो विचार करते हैं ना, अरे अरे इसको ये तकलीफ है, यानी मैं भी जीव हूं, ये दूसरा जीव है और उसको तकलीफ है, ऐसे कुछ ना कुछ सोचता है। अपने आप में वेदना हुए बिना दया का भाव पैदा नहीं होता। दूसरे जीव के वेदना देखकर अपने आप में कुछ वेदना बनेगी तो उस पर दया बनेगी। जब कभी आप हम खुजल दुखी कुत्ता बिल्लियों को देखकर, या जिसकी हड्डियां निकली है ऐसे भैंसा बैल जिनके गर्दन पर कुछ फोड़ा है और खून चूता है, और उन्हें कोई अपनी गाड़ी में जोत कर चाबुक मारकर चलाते हैं, उन्हें देखकर जो दया आती है, सो उसका मूल यह है कि खुद में भी ऐसा अनुभव हो जाता है कि ऐसा यदि मैं होता तो कितनी मुझे वेदना होती, यानी वो अपने बारे में भी वहां सोचता है। इतनी बात क्या है, अभी कोई ऐसा भी है ना, कोई दृश्य है, कोई नाटक है, कोई पिक्चर है, तो उन पात्रों के साथ अपने को इमेजिन करता है वो, क्योंकि वो देखते देखते क्यों रोना आता है किसी, यानी इमेजिन करते हैं उसके भूमिका में समरस होकर उसको देखता है, अपने को देखता है, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर भी। ऐसी कुछ उसके निकट पहुंच किए बिना, वेदना हुए बिना दया का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। यह दया का भाव शुभ भाव है तो बंध का कारण, इस भूमिका में तो ऐसे दया के भाव हो गए। यह विषय कषायों की कलुषता को दूर करने का एक सुगम साधन है। हम दया के पंथ में चले। यानी विषय कषाय में रचे पचे रहने से ये ऐसे दया का भाव उठना ठीक बात है, उसके कंपैरिजन में है तो शुभ भाव है तो बंद का कारण, पर अशुभ हाँ अशुभ में रचे पचे हाँ यानी कोई विषय कषाय में रचा पचा रहे उससे तो करुणा भाव से दीन दुखियों की मदद करना ये शुभ भाव है। लेकिन विषय कषायों की कलुषता को दूर करने का एक सुगम साधन है, जैसे ये जो कुछ क्रियाएं भी बताई है तो शुभ भाव की बात है, परंतु वहां तो जो कुछ अन्य भी क्रियाएं हैं तो वो तो पाप क्रियाओं से छूटकर उसके लिए ये इसकी इसको साधन बताया है। वो करने से आत्मानुभव होता है ये नहीं कह रहे हैं। आत्महित में इंद्रिय दमन का सहयोग, आत्मा का क्या उसमें हित हुआ, आत्मा स्पर्शन ने अपने आप को भी उसके वहां हम सोचते हैं तो ये दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। 89 हाँ, 89 पेज है। हाँ, आत्महित में इंद्रिय दमन का सहयोग, इंद्रिय दमन से इंद्रिय के विषय रुक जाते हैं। इंद्रिय दमन यानी उसके जो इच्छाएं हैं उसको यानी उसमें उत्पन्न नहीं होना, वो सच में तो इंद्रिय दमन है। सच में इंद्रिय दमन किसको कहेंगे, उसकी रुचि कम हो जाना। ज्ञान बल से विषयों को रोक लेना यह है इंद्रिय दमन। ये ज्ञान बल नहीं होगा हाँ ये बात मुख्य है। हाँ केवल नहीं नहीं वो तो इच्छा बहुत हो रही है पर क्या करें अभी नहीं करना है ना, वो बात नहीं है। हाँ तो ज्ञान बल से विषयों को रोक लेना यह है इंद्रिय दमन। हितार्थी आत्मन यानी अपना हित चाहने वाले हे आत्मा, तुम दमन के पंथ में लगे, लगे ने लगो। कोई पुरुष ऐसे होते हैं उनके मन में कोई इच्छा जग जाए कि हम आज अमुक चीज खावेंगे, तो इच्छा तो जग गई मगर थोड़ी देर बाद उसी वस्तु का त्याग कर देते हैं जिसकी की इच्छा जगती है। क्यों उपयोग कर करके इच्छा जगती है, साधारण सुगम प्रयत्न से जो बात बने वही भोगा जाए। क्या कहना चाहते हैं, यानी किसी के सोच सोच कर नए नए इच्छाएं उत्पन्न क्यों करते हो, ये कहना चाहते हैं। जो सहज रूप से जो खाने पीने की चीज मिल रही उसको तो उसको भोगे ना उसको खा लो, इसके यहां लिखा ना साधारण सुगम प्रयत्न से जो बात बने वही भोगा जाए। इसके तो ऐसी इच्छा है कि कहीं जो दूर भी मिलती है वहां जाके वो लेके आएगा। हमारे इनके एक मित्र घूमने को मिलते वो गए थे अमेरिका में अपने दोस्त के अपने पुत्र के यहाँ, तो उनको तो यहाँ तो पान और वो तो जर्दा खाने की बहुत अच्छा याद आदत थी। तो बोला पुत्र को ऐसा एक दिन कि ऐसा ऐसा करना, तो चलो पापा ले गया। तो कितने 50 किलोमीटर तो मैं दूर जाना पड़ा और इतने इतने डॉलर में मिला, तो फिर वो तो उसके खाने की इच्छा मर गई, अरे इतना महंगा होता यहाँ और इतना दूर जाना पड़ता है। इंद्रियों ने जैसा जो कुछ चाहा उनकी पूर्ति में लग गए तो फिर कल्याण का यत्न कब करोगे। इंद्रिय दमन के पंथ में चलो, ये तो जीव ही चाहता है तो हम इंद्रियों की बात करते, इंद्रियों ने चाहा ये तो कहने की पद्धति है, यानी उस इंद्रिय के बारे में ये जीव इच्छा कर करके उसके पीछे चलता है कि वो उसकी पूर्ति के लिए। पहले भी बात आई थी ना पूर्ति होनी है ना, क्या होता है उसका नाश होता है, चीज मिलती है तो इच्छा नहीं रहती। त्याग मार्ग, पर वस्तुओं का राग छोड़ना इसका नाम है त्याग। देखो ये केवल किसी चीज को छोड़ना, उसका नाम उसको छोड़ना नहीं, उसके राग का त्याग है। क्योंकि परवस्तु तो त्याग स्वरूप ही है, अपने से भिन्न ही जुदी है। राग से अनेक क्लेश मिलते हैं और राग के त्याग से ये क्लेश दूर हो जाते हैं। राग के त्याग के पंथ में चलो तो इससे कोई निर्विकल्प परम पद प्राप्त होगा। राग रहित ऐसा परम पद यानी उत्पन्न ही नहीं होगा वो। समाधि भाव कहते हैं समता परिणाम को। समता यानी ना राग ना द्वेष। राग द्वेष न जग कर एक केवल ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयत्न हो तो कोई अलौकिक आनंद अनुभूत होगा। प्रयत्न करके और ढंग के साथ बढ़े, इन शुद्ध कामों में लगे तो संसार का परिभ्रमण मिटेगा। शिव पथ और भव पथ। शिव ने मोक्ष, मोक्ष मार्ग। भव पथ यानी संसार मार्ग। सूत्र जी में एक सूत्र आया है, सूत्र जी यानी तत्वार्थ सूत्र को सूत्र जी कहते हैं। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और अगर ऐसा सूत्र बन जाए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग तो गलत है क्या? दोनों ही सूत्र ठीक है। सूत्र जी के आठवें अध्याय में मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा इति कहा है। बंध ब के ऊपर भी बिंदी आ गई और ध को भी न लगाया, बिंदी हटा दो, बिंदी हटा दो। इसी का संक्षेप रूप है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। बंध के हेतु का अर्थ क्या है, वही तो बात है ना। हम जिस विधि से चलकर दुखी हो रहे हैं उससे उल्टा चलने लगे तो ये सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। कल बात यही थी ना कि जो जिस कारण से जो कार्य हुआ है, अब हम कारण कार्य उल्टा चाहते हैं तो कारण भी उल्टा, वो प्रयत्न भी उल्टा करो। अभी तक क्या कर रहे हैं, अज्ञान और असंयम, तो क्या हो रहा था, जन्म मरण हो रहे थे। अब जन्म मरण से छूटना चाहते हो तो अज्ञान भी छोड़ दो और असंयम भी छोड़ दो। तो वहां सम्यक ज्ञान और चारित्र की बात की थी, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि हम जिस विधि से चलकर दुखी हो रहे हैं उससे उल्टा चलने लगे तो ये सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान दर्शन स्वरूप निज अंतस तत्व की श्रद्धा करें, पहले में पहले उसका विश्वास करें, उसका ही ज्ञान करें, उसका ही आचरण करें। पहले तो श्रद्धा होगा तो हम पहले तो आगम से जानेंगे, ज्ञानियों के द्वारा जो बताया है उस पर विचार करेंगे और फिर उसका लक्ष्य करेंगे तो उसका ज्ञान होगा। उसको जानना है ना, उसको उपयोग में लेकर उसी को जानते रहना और उसमें एकाग्र होकर जानते रहना, वो है उसमें चारित्र, उसमें रमना चरना, उसका आचरण, यही उसी को कहते हैं। ये शरीर का आचरण ये हमारा आचरण नहीं है, हमारा आचरण तो हमारे में होगा, वही बात है, उसी को चारित्र कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा करे तो इस रत्नत्रय के लाभ से, रत्नत्रय ने समय दर्शन समय ज्ञान और समय चारित्र, संसार के संकटों से हम निवृत्त हो जाएंगे। हम रात दिन के 2400 घंटों में किसी क्षण इस निर्विकल्प ज्ञान ज्योति मात्र आत्म तत्व का स्पर्श करते रहे तो इस उत्कृष्ट भव और धर्म का पाना सफल होगा। जब चाहे रात दिन के 2400 घंटों में, ऐसे नहीं ये अमुक समय में बैठना चाहिए ऐसा करके बैठे, कहते कि थोड़ा समय इसके लिए निकालो। 108 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, पहले उसको चेक करते हैं आपने क्या होगा शायद। विज्ञान निहत मोहम कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायमिव त्याग परिग्रहाणा भवशन एमवश परिग्रहाणाम अवश्यम भ की जगह म चाहिए अजरामरम कुरुते, कुरुते ने कुरुते रुरस्व। वो भ का म करना शोभा, सेकंड लाइन है ना, त्याग परिग्रहाणाम अवश्य चाहिए, वो परिग्रहाणाम अवश्य, अवश्यम अजरामरम कुरुते रुरस्व। हाँ, ये टोलर मल जी साहब अर्थ करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। पहले पहले गाथा पढ़नी, श्लोक पढ़ना भी, आर्य छंद। विज्ञान निहितमोहम कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायमिव त्यागः परिग्रहाणाम अवश्यम अजरामरम कुरुते। जैसे पवन साधन विषय कुटी प्रवेश किया है, यानी ये जो कुछ प्राणायाम वगैरह करते हैं, यहाँ उसका फुट नोट में लिखा है उसका अर्थ, वायु का कुंभक करके, कुंभक यानी वायु अंदर लेके वो रोकते ना, एकाधिक घंटा व दिनों तक भूमि में प्रवेश कर अवस्थित रहना योगाभ्यास का यह एक प्रकार है। जैसे फिर पढ़ती हूँ, जैसे पवन साधन विषय कुटी प्रवेश किया है सो निर्मल शरीर को करे, तैसे भेद विज्ञान करी नष्ट किया है मोह जाने, ऐसे जीव को परिग्रहणी का त्याग है सो अवश्यमेव अजर अमर करे है। इसी का भावार्थ स्वयं बता रहे हैं, भेद विज्ञान करी यानी भेद विज्ञान से मोह का नाश करना सो सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन है। बहुरी बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक चारित्र है। अभ्यंतर में तो वो तो मिथ्यात्व सारे राग द्वेष तो हो ही गए, और बाह्य में भी अन्य जो चीज, तथा सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दृष्टि जीव भया और वह सम्यक चारित्र अंगीकार करे तो साक्षात मोक्ष मार्ग हुआ, मोक्ष को पावे ही पावे, या में किछु संदेह नाही। जाते ही सर्व कारण मिले कार्य का होना दुर्निवार नाही है, सभी कारण मिलते हैं तो कार्य होना ही अवश्य होगा ही होगा। ताते ही रत्नतर विषय कोई हीन होई तो मोक्ष होने विषय संदेह होई, सर्व तीनों मोक्ष के कारण मिले तब मोक्ष होई ही होई ऐसा निश्चय करना, तीनों होते तो मोक्ष होगा ही होगा। यानी चारित्र अंगीकार किए बिना तो, यानी जो मुनि योग्य वितरागता हुए बिना तो आगे का मार्ग तो है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। अभी यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान पूर्वक त्याग में परम विशुद्धि का सामर्थ्य। एक ज्ञान पूर्वक त्याग की बात है, ये बाल व्रत बाल तप की बात नहीं है। वस्तु विज्ञान से जिसने मोह को दूर किया है, यानी वस्तु का स्वरूप जानकर भेद विज्ञान के द्वारा मोह को दूर किया यानी सम्यक तो प्राप्त किया है, ऐसे पुरुष के जो परिग्रह का त्याग होता है वह अवश्य ही उसे अजर और अमर कर देता है। यानी क्या वो बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं है? अरे वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप रहता है, वो तो इन सच सच्चे अर्थ में अजर अमर हो जाता है। एक आयुर्वेदिक दृष्टांत है कि ये दृष्टांत बताया ना कुटी प्रवेश का, ठीक स्थान बनाकर जिसमें पवन के स्थान स्वयं बने हुए हैं, ऐसी कुटी में रहकर कोई रोगी पुरुष एक विशुद्ध काय को प्राप्त कर लेता है, ये कुटी प्रवेश का ये अर्थ है। कुटी यानी वो जो झोपड़ी घर ऐसा होता है ना, उसका अर्थ होता है कुटी। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, आयुर्वेदिक दृष्टांत के ठीक स्थान बनाकर, जिसमें पवन के स्थान स्वयं बने हुए हैं, ऐसी कुटी में रहकर कोई रोगी पुरुष एक विशुद्ध काय को प्राप्त कर लेता है। कुटिया, वहां तो कुंभक अर्थ किया है उसका, परंतु यहाँ अलग अर्थ बता रहे। इसी प्रकार यह परिग्रह त्याग अजर और अमर को पद को प्राप्त करा देता है। सम्यक दर्शन की अपूर्व महिमा है। जिस पुरुष को अपने आप में विराजमान इस शुद्ध अंतस्थ तत्व का भली प्रकार दर्शन हो जाता है, उस पुरुष का नियम से निर्वाण निश्चित हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रथम भेद विज्ञान चाहिए। किसी भी वस्तु का हम समुचित दर्शन तब कर पाएंगे जब हम अन्य पर्वस्तुओं से उसकी भिन्नता नजर में ले। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप रूप में है। कोई भी पदार्थ हो अपने स्वरूप से है, पर रूप से तो है ही नहीं। मैं भी अपने ही स्वरूप रूप हूं, समस्त पर पदार्थों से न्यारा हूं। ऐसे विविक्त, विविक्त यानी भिन्न, सबसे जुदा ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को उपयोग द्वारा दर्शन कर लेना, आंखों से की बात नहीं है, अपने उपयोग में उसको लेना, सो सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से मोह दूर हो जाता है। मोह दूर करके फिर राग द्वेष के विजय के लिए जो परिग्रह का त्याग किया जाता है वह सम्यक चारित्र है। इस जीव को सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो और सम्यक चारित्र भी हो, तो अब इन तीनों के प्रसाद से उसे निर्वाण अवश्य मिलेगा। यदि कारण सब ठीक मिल जाए, उपादान ठीक हो, तो कार्य सिद्धि कैसे न होगी। जैसे ये संसार के कार्य हमारे मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण के बल से चल रहे हैं, ऐसे ही समझिए। इससे विपरीत अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप हम रत्नत्रय मार्ग पर चले, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना सहित चले, तो नियम से निर्वाण होगा, संसार के संकट छूटेंगे। क्योंकि यहाँ तो जन्म मरा रूप, जन्म मरण रूप तो कार्य देख रहे हैं और उसका कारण है अज्ञान, असंयम आदि, तो वो चल रहा है तो उसका कार्य भी हो रहा है, तो उसके उल्टे कारण अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष रूपी कार्य मिल जाएगा। बैरी में राजी रहने का व्यामोह और उस संकट से छुटकारे का उपाय। यह जीव राजी रहता है मोह में, किंतु इस जीव का वास्तविक बैरी है मोह। बैरी से सताया जा रहा है, उस सताने में ही राजी है और उस बैरी में भी राजी है। कौन बैरी है? ये मोह। स्वयं मोह कर रहा है, उसी के द्वारा ये दुखी है, फिर भी उसी में रचा पचा है, उसी में राजी है, उसी में खुश खुश हो रहा है। यह कितना विकट भ्रम है इस जीव पर। सम्यक दर्शन होने पर इससे मोक्ष होगा, यह तो निर्णित हो गया, पर सम्यक चारित्र भी साथ हो तो सम्यक चारित्र की पूर्णता होते ही नियम से मोक्ष है। हाँ, खोड़ो खोड़ो कोनो खोड़ो, वो क आधा इन्हें हलन करना उसको, सम्यक चारित्र। हाँ, इन तीनों में कोई कम रह जाए, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक चारित्र नहीं है। देखो, सम्यक चारित्र कहने से चारित्र तो सम्यक हो ही जाता है सम्यक दर्शन के साथ साथ, परंतु वो जिसको कहने अभी असंयम है उसको चारित्र नहीं कहने में आता है, अचारित्र कहेंगे। चौथा गुण देखो, पहले गुणस्थान वाला भी असंयमी है, उसका तो मिथ्या चारित्र है। चौथे गुणस्थान वाला भी असंयम है, उसको संयम नहीं हुआ है। संयम कब कहेंगे? छठे सातवें वाले को संयम कहेंगे, तब उसको चारित्र नाम देने में आता है। संयमा संयम को भी देश चारित्र कहते हैं। इसलिए चौथे वाले को चारित्र नहीं ऐसा कहने का प्रघात है। वहां पर भी चारित्र उतने अंश में तो है ही है, क्योंकि तीनों एक साथ शुरू हुए हैं, परंतु उसको चारित्र नाम अभी देने में नहीं आता, इसलिए चारित्र के बिना सम्यक चारित्र नहीं ऐसा कहने का प्रघात हुआ है। पर वो सम्यक नहीं ऐसा कहना उचित नहीं है, है तो सम्यक। जो कोई चारित्र की दशा है वो है सम्यक, क्योंकि वितरकता का अंश तो शुरू हुआ है, परंतु उसके जो इंद्रिय संयम प्राणी संयम नहीं है, उस अपेक्षा से उसको चारित्र नहीं है ऐसा कहेंगे। इसके उसको अचारित्र ऐसा भी कहीं कहीं आता है, तो चारित्र अभी उसको नहीं है, तो खाली दोनों से कुछ काम नहीं होगा ऐसा भी कहेंगे। तो यहाँ सम्यक चारित्र के यानी वो मुनि का संयम नहीं है, बस इतना अर्थ लेना। यहाँ पर संयम यानी केवल बाह्य की बात नहीं है, अंतर बाह्य दोनों की जो पोजीशन है उसकी, अंतरंग वितरकता और बाह्य में परिग्रह त्याग, तो उसकी पूर्णता हो जाएगी तो मोक्ष जरूर मिलेगा। यहाँ लिखा ना नीचे से पांचवें लाइन, हाँ इन तीनों में कोई कम रह जाए, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक चारित्र नहीं है, तो उसे अभी मोक्ष न मिलेगा, किंतु मोक्ष मार्ग पर अंश रूप से चलता जरूर जा रहा है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उस कार्य का विश्वास हो, ये प्रथम ये उस विश्वास के साथ डटे रहना चाहिए। पहले ही रोना चालू कर देता है कि उसमें संभ्रम प्रश्न चिन्ह लगाता है, हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसका उसमें विश्वास नहीं उस कार्य में। तो प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उस कार्य का विश्वास हो, उस कार्य का ज्ञान हो और उस कार्य के अनुरूप अपना आचरण बने, यह सर्वत्र आवश्यक है। यह लौकिक बातों में भी ये होता है ना, कोई चीज ढूंढने पर नहीं मिलते तो उधर ही रखी है, परंतु तो अरे नहीं मिल रही, दूसरा जाकर वहीं से ढूंढ निकालता है। तो बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ किसी भी चीज के बारे में, जैसे घर का काम हो, यहाँ लिखा है व्यापार का काम हो, सब में विश्वास ज्ञान और आचरण चाहिए। कि बिल्कुल जिसको कहेंगे कि करने की जो जिद जो है, या नहीं ये कर दिखाऊंगा या ये ऐसा ही होगा, ये विश्वास पहले होता है, उस संबंधी ज्ञान भी और उस वैसा उसका आचरण इन्हें प्रयत्न भी रहते हैं। यही टॉपिक लिया आगे 91 पेज पर कार्य सिद्धि में विश्वास ज्ञान और आचरण की आवश्यकता। जैसे रसोई बनाने का ही काम है तो उसमें भी यूं विश्वास होता है कि रसोई ऐसी बनती है। क्या कभी ऐसा संदेह किया जाता है कि कल तो चूल्हे पर तवा रखकर आटे से रोटी बनाकर पकाया था, आज आटा से रोटी बनेगी या नहीं, ऐसा संदेह नहीं होता। कैसा उसका पूरा विश्वास है, उसकी विधियों का भी पूरा ज्ञान है। जिस प्रकार से जो चीज बनती है वह सब भी बराबर ज्ञान में है, और जैसा विश्वास है ज्ञान है वैसा काम भी करने लगे तो रसोई क्यों न तैयार होगी। जैसे हम देखते हैं ना, बीज बोते हैं, अरे वो बीज जमीन के अंदर डालने से कैसे झाड़ उगेगा, अरे उस पर विश्वास रखो, उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि इसी विधि से ये होने वाला है, और फिर उसके उस विधि से उसको किया, वो आचरण में भी लाया। किसी भी चीज में ये, किसी भी कार्य में ये बात लगती है। हाँ, ज्ञान भी रहे विश्वास भी रहे और बनाए नहीं पड़ा रहे आलस्य किए तो रोटी कैसे बनेगी। अब अपनी बात सोचते, ये हमको पहले में पहले नक्की कहता है मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले नकार घंटा जिसको कहेंगे ना, तो कहते कि मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं तो ज्ञान का पिंड हूं, ऐसा करके फिर उसके संबंधी कोशिश करते रहो तो क्यों नहीं समझेगा। यहाँ लिखा ना प्रत्येक बात में ये बात हो जाती है ऐसा, तो कहते और पढ़ा रहे आलस्य किए तो रोटी कैसी बनेगी, ऐसे ही करना ही नहीं चाहता कुछ, उसके बारे में प्रयत्नशील ही नहीं रहता तो कैसे बनेगी। व्यापार के काम में भी व्यापार विषयक विश्वास चाहिए, अर्थ के अर्जन का उपाय यह ही है, यह विश्वास बना हुआ है और उसकी कुछ विधियों पर भी विश्वास बना है, उसका भी ज्ञान है, और फिर कार्य भी करने लगे तो वहां भी उसे लाभ होता है। यो ही समझिए, आत्मा को मुक्त करना है, मोक्ष देना है, तो पहले मोक्ष संबंधी विश्वास चाहिए। यह मैं आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद घन हूं, ऐसा विश्वास चाहिए। यानी मैं तो आत्मा हूं और ज्ञानानंद घन हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये शरीर तो मैं नहीं हूं, पहले में पहले विश्वास चाहिए। और उन सब तत्वों का ज्ञान चाहिए जिसके आश्रय से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा लिखते हैं प्रयोजनभूत तत्व, सात तत्वों का ज्ञान या अन्य भी जो कुछ है, और फिर वैसा आचरण कर लिया जाए तो उसको मोक्ष भी अवश्य होगा। यहाँ आचरण में यानी पहले में पहले अपने ज्ञान से अपने को जानते रहना, यही आचरण है। फिर बाह्य में तो यथा योग्य तो उसका तो सुमेल होगा ही होगा। अकिंचन्य भावना व निष्परिग्रहता के हित में पूर्ण योगदान। मोक्ष के मायने हैं केवल अकेला रह जाना, यानी मैं अकेला हूं और वैसा रह जाऊं, वही मोक्ष है। आत्मा के साथ जो शरीर, कर्म, समागम, परिग्रह, देह, परिग्रह के बाद एक कॉमा लगा लो, आदि दंड फंद लगे हैं, ये अच्छा लगता है ना कि दंड फंद लगते हैं है? शरीर शरीर से शुरू करना, सब शरीर है, कर्म है, बाकी समागम, परिग्रह, सब कुछ दंड फंद लगे हैं, वे सब टल जाए, उनसे निवृत्ति मिले, इसका नाम है मोक्ष। अरे अभी तो उसमें से एक भी नहीं छूट रहा है, थोड़ा उससे दूर हो जाएगा तो कैसा कैसा हो जाता है अंदर। पहले तो यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा स्वरूप निर्मल है और मैं निर्मल हो सकता हूं। जो पुरुष अपने को ही निर्मल नहीं मान पा रहे हैं, जिन्होंने इस देह को ही अपना सर्व कुछ मान लिया है, उन्हें मुक्ति कहां से प्राप्त होगी? यानी जिस रूप बनना है उस रूप पहले से वैसा मानना शुरू कर दो ना, तो हाँ बिल्कुल। पहले तो अपने में निर्मल पने का विश्वास होना चाहिए। निर्मल को यहाँ तो निर्मल की बात उठाई है, तो मैं तो अभी वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, क्योंकि जो द्रव्य है वो तो परिपूर्ण ही रहता है और वो स्वतः सिद्ध है, उसका जो स्वभाव है अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई रंच मात्र भी कमी नहीं आती। अरे हम तो अधूरा है, हम क्या करें, तो इतना वो तो जैसा परिणमन है, पर्याय में जैसा है तो उतना ही मान लेता है। तो पहले में पहले ये विश्वास होना चाहिए, अपने निर्मलपने का विश्वास होना चाहिए। फिर इस तरह का अपना उपयोग बनाए, ऐसा ही अपने में अनुभवन करे तो निर्वाण अवश्य होगा। देखो कितनी सरल विधि है, सबसे आसान है, स्वाधीन है, कुछ बाह्य में कोई लटपट ही नहीं ना, खटपट ही नहीं करनी कुछ। निष्परिग्रहता और अकिंचन्य भावना, ऊपर उल्टा दिया, अकिंचन्य भावना निष्परिग्रहता हित में पूर्ण योगदान, ये दोनों शांति की ओर ले जाते हैं। निष्परिग्रहता आचरण में चाहिए और आकिंचन्य श्रद्धा में चाहिए। क्योंकि मैं अकेला ही हूं, ये आकिंचन्य है ना, इससे रहित ही हूं, और फिर वैसा आचरण में भी वो जो संयोग से उससे जुदा हो जाना, मैं आकिंचन हूं, मेरा मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है, जो मेरा स्वरूप है वही मैं हूं, वही मेरा है, इसके आगे एक अणुमात्र भी मेरा नहीं है, यह विश्वास चाहिए। चाहे रागवश, परिस्थितिवश वह न रह सके अकेले, और परिजन का, इष्टजन का पालन पोषण आदि भी करे, धनार्जन भी करे, तो भी ज्ञानी पुरुष को अंतरंग में यह श्रद्धा है, मैं तो अकेला ही हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, परमाणु मात्र भी मेरा अन्य कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञानी गृहस्थ का निरंतर विश्वास रहा करता है। फिर उसका यह विश्वास जब भले रूप में होने को होता है तो इसकी अनुव्रत और महाव्रत में प्रगति होती है। जो श्रावक का व्रत अथवा साधु का व्रत ग्रहण करता है उसके सम्यक चारित्र बनता है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आदा चारित्र के प्रसाद से यह जीव कर्मों का क्षय करता है। ज्ञान का गांभीर्य। ज्ञान तो जीव का एक स्वरूप है। ज्ञान के किसी प्रकार का परिणमन होने के कारण कर्मबंध अथवा कर्म मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनती है, न कर्म बनता है न उसके मोक्ष होता है। किंतु मिथ्यात्व हो और मिथ्या आचरण हो तो यह जीव संसार में रुलता है, कर्मों से बंद होता है। वो बात आती है ना पुरुषा सिद्धि उपाय में, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, फिर भी राग में बंध कहा। जितने अंश में वो सम्यक्त्व है, वो दर्शन श्रद्धा की बात की, उतने अंश में बंधन नहीं है। तो तीनों ही गाथाओं में श्लोकों में ऐसे बताया कि जितना राग है अंश उतने से ही बंध है। यहाँ तो मिथ्यात्व और मिथ्या आचरण हो उससे कर्मों से बंध होता है। यदि यह जीव अपने उपयोग को संभालता है, अपने रूप रहता है, तो इसे कर्म बंध नहीं होता। हर एक परिस्थिति में अपना सम्यक तो बराबर जागृत रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र निर्जरा के कारण है और मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र ये संसार के कारण है। ज्ञान एक मध्यस्थ है, तटस्थ है। ओह, ज्ञान के कारण न बंध हो न मोक्ष हो। देखो क्या कहा है, ज्ञान को दोनों ही कारणों में नहीं, ये लब्धि सार में भी लिखा है। ये लब्धि दो है, सम्यक दर्शन ये लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि, ऐसे उन्होंने लब्धि में दो प्रकरण दो लिए है, संवर निजरा के वो कारण बताए, शुरुआत में ही बताया था। यह स्पष्ट रूप से लिखा, पहले भी ये बात आई थी ना, एक वाक्य पहले भी उन्होंने लिखा था, यहाँ लिखा ना, ज्ञान के किसी प्रकार का परिणमन होने के कारण कर्म बंध अथवा कर्म मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनती। तो यहाँ पर भी आगे लिखा 92 पेज पर, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र निर्जरा के कारण है, वो का आधा करते जाना जहां जहां नहीं है वो, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है। ज्ञान एक मध्यस्थ है, तटस्थ है। देखो पहले भी ये बात आई थी, हाँ ये अज्ञान को कहने में आता है, पर अज्ञान ही नहीं, वो मिथ्या रूप, वो मिथ्यात्व के कारण ही वो जो बंध है, अज्ञान से बंध कहने में आता है ना, वो मिथ्या ज्ञान के कारण, यानी मिथ्यात्व के कारण। जिसे जानना, जितना जानना है उससे बंध नहीं। हम पूछते ना हमेशा, अभी इतना आपका ज्ञान खुला है, प्रकट है, इससे बंध है कि जो ज्ञान नहीं है उससे बंध है? आप क्या कहते हैं? ज्ञान से जो प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, और जो है ही नहीं वो क्या बंध करेगा? ख्याल में जो है ही नहीं, हमको अवधि ज्ञान नहीं, मन परिज्ञान नहीं, वो क्या बंध करेगा? औदयिक जो अज्ञान है उससे बंध क्या होगा? और जो हमारा क्षोभम ज्ञान, ज्ञान का उहाड़ है, वो स्वभाव का अंश है, उससे कहाँ बंध होगा? इसलिए यहाँ कहा ज्ञान एक मध्यस्थ है, तटस्थ है। ज्ञान के कारण न बंध हो न मोक्ष हो। जो यह बताया जाता है कि कोई उल्टा ज्ञान करे तो कर्मों से बंधता है, तो उसके मिथ्यात्व के कारण बंध है, ऐसा समझना। समझ में ही नहीं बात। ज्ञान पर जब आरोप किया जाता है वो तो मिथ्यात्व के साथ वाला जो ज्ञान है उसको अज्ञान कहने में आता है, जिसको हम कुज्ञान कहते हैं, और उसको बंद, उस पर आरोप आता है इससे बंद हुआ। मिथ्या दर्शन व मिथ्या चारित्र से बंद है, पर ज्ञान से बंद नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो ज्ञान के कारण मोक्ष नहीं होता। मोक्ष क्यों हो रहा है? ऊपर बताया ना, देखो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र निर्जरा के कारण है, तीसरी लाइन में, और मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र संसार के कारण है। ज्ञान एक मध्यस्थ है, तटस्थ है, क्योंकि ज्ञान जानना जो चल रहा है, जानने के कारण कोई बंध नहीं है, जानना तो स्वभाव है। थोड़ा जाने या अधिक जाने, अधिक जानने से जल्दी मोक्ष होता होगा तो ऐसा भी नहीं है।
लेकिन बातें तो सब ज्ञान में ही तो होती है ना, लेकिन
होता तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञान में ही निर्णय होता है, ज्ञान ही अपने सम्मुख होगा तब समय दर्शन होगा, तब उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। केवल जानने से, आगम के जानने से कुछ नहीं हो रहा था, उसने आत्मा को जाना। हाँ
देखो, यहाँ पर बात यह है, यहाँ पर बात यह है कि स्वरूप में जो स्थिरता है, रमणता है, जिसको यहाँ सम्यक चारित्र का, वो तो निर्जरा का कारण है। और अधिकतर अंतरंग में स्थिरता होगा तो वो तो मोक्ष ही होगा, सब कर्म नष्ट होंगे। उस वक्त जीव की क्या पोजीशन है, वो स्वरूप में रमणता करता है। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञान न बंध का कारण है न ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान का कार्य तो जानना है, और ये स्वरूप में स्थिरता जो है उसे निर्जरा हो रही होता है।
जरा जोर से बोलना। हाँ।
निर्जरा हो रही, तो निर्जरा हो रही वैसे पूर्ण कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, स्वरूप में स्थिरता के कारण ही तो मोक्ष हो जाएगा।
जो अपने में एकाग्रता है उसी को चारित्र का, हाँ, उसकी मुख्यता है। उसको जानना जानना जानना, इस तरह से ज्ञान की भी पर्याय कहने में आती है, परंतु उसको अलग से नाम दिया ना, सम्यक चारित्र, आचरण, स्थिरता। देखो आगे भी उन्होंने समझाया, जरा आगे पढ़ते देखो। ज्ञान के कारण न बंधो न मोक्ष, वैसे तो कहते हैं कि ज्ञान की क्रिया से सारा कुछ होता है, ज्ञान में ही सब कुछ होता है, ये भी एक अपेक्षा से बात होती है। जघन्य ज्ञान किसको कहते हैं? जघन्य ज्ञान राग मिश्रित ज्ञान को, वो पर्याय ज्ञान, वो अलग, वो जघन्य नहीं। जघन्य ज्ञान बंध का कारण जब कहते हैं, यानी राग मिश्रित ज्ञान, अज्ञान जो है, अपेक्षा से बात है। हम कहने जो कुछ होना है वो सब ज्ञान में ही होना है, ज्ञान ने ही निर्णय किया, ज्ञान ने ही श्वसन मुक्ता की, परंतु की उसने, परंतु हुआ सम्यक दर्शन, उस हुआ एकाग्र, तो उसके कारण वहां संवर और निर्जरा होती है। और ये केवल इनका अपना नहीं है, ये तो मूल शास्त्र में बात आती है, लब्धिसार में भी ये बात लिखी थी, वहां भी ज्ञान को नहीं लेते हुए दर्शन और चारित्र को लिया है उन्होंने। आगे पूरा पढ़ते इसको देखो। ज्ञान के कारण न बंधो न मोक्षो, चौथी लाइन। हाँ, जो यह बताया जाता है कि कोई उल्टा ज्ञान करे तो कर्मों से बंधता है, तो उसके मिथ्यात्व के कारण बंध है, ऐसा समझना। मिथ्या ज्ञान ये नाम मिथ्यात्व के कारण पड़ा है उसका। मिथ्या दर्शन व मिथ्या चारित्र से बंध है, जैसे हम कहें मोह राग और द्वेष, इससे बंध है, पर ज्ञान से बंध नहीं, और न ज्ञान से मोक्ष है। ज्ञान जब अनुपम तटस्थ है तभी तो हमारे लिए वह आलंबन है, यानी ज्ञान का आलंबन है और उसके द्वारा ये हो जाता है सहज। ज्ञान के द्वारा हमारा उपयोग हम अपने में ही लगाते रहे, उसी को जानते रहे, तटस्थ रहे, यही कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूप को जाने, विश्वास करें और निष्पक्ष होकर, समता में रहकर, ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने आप की संपदा की वृद्धि करें, यही निर्वाण पाने का उपाय है। अब यह बतला रहे कि निर्वाण के मार्ग में लगने वाले अनेक पुरुष होते हैं, उनमें सर्वोत्तम त्यागी पुरुष कौन है? पहले भी त्याग की कुछ बात उठाई थी, अभी ये दूसरी पद्धति से बता रहे कुछ। हाँ रुक जाएंगे, रुकना है क्या 10 मिनट? अच्छा ठीक है, ये श्लोक अभी हम कल करेंगे, आज जरा जल्दी यहाँ बंद कर रहे हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत होड़ो।
नमो